हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा। थोड़ा सा आप लोग ऐसे बैठेंगे तो चलेगा। नहीं नहीं हरे कृष्णा थोड़ा सा श्री वृंदावन धाम की श्री कृष्ण बलराम की राधा श्याम सुंदर भगवान की श्रील प्रभुपाद की जय हो। आज परम पवित्र दिवस है शिवरात्रि का और शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी का गौरव जरूर करना चाहिए। आप लोग सब व्रत रखते हैं क्या शिवरात्रि का? सब लोग सब ब्रजवासी लोग भोले बाबा को बड़ा मानते हैं। वो हमारे परम पूज्य सचिनंदन महाराज हैं, उन्होंने भी कहा था कि जब हम ब्रज भूमि में भगवान की प्रार्थना करते हैं तो उसमें गोपेश्वर महादेव की प्रार्थना भी करनी चाहिए। वो ब्रज भूमि के सभी पूज्य महान जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से एक हैं और उनका जरूर ही स्मरण ब्रज के स्मरण में करना चाहिए। जैसे हम वृंदावन धाम को स्मरण करते हैं, फिर हम जमुना देवी का स्मरण करते हैं, फिर हम गिरि गोवर्धन का स्मरण करते हैं, फिर हम गोपेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं, फिर वृंदा देवी का स्मरण करते हैं, फिर उज्ज्वल और सुबल सखा की स्मरण करते हैं, फिर ललिता विशाखा देवी का स्मरण करते हैं, राधा कुंड श्याम कुंड का स्मरण करते हैं, फिर कृष्ण बलराम का स्मरण करते हैं और लाडली लाल का स्मरण करते हैं। इस तरह से ब्रज का स्मारा स्मरण पूर्ण हो जाता है। इसी सीक्वेंस में ब्रज का स्मरण करना चाहिए। तो शिवजी महाराज जो हैं वो एक विशेष तत्व हैं जिसका नाम है शिव तत्व। एक होता है जीव तत्व जिसमें हम सब लोग आते हैं, हमारे अंदर भगवान के 50 गुण हैं लेकिन अणु मात्र में हैं, लेकिन ब्रह्मा जी में यही 50 गुण भगवान के परिपूर्ण मात्रा में है 100%। और उसके बाद में शिव तत्व आता है और शिव तत्व जो है उसमें भगवान के 55 गुण हैं परिपूर्ण मात्रा में। और उसके बाद में होता है विष्णु तत्व। बहुत सारे भगवान के जितने नरसिंह भगवान हैं, मत्स्य अवतार है, कुर्मा अवतार है, वराह अवतार है, हयग्रीव भगवान हैं, जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सब लोग विष्णु तत्व के अंदर आते हैं। उनके अंदर 60 गुण होते हैं परिपूर्ण, 60 क्वालिटीज। और फिर श्री कृष्ण भगवान उनमें 64 गुण आते हैं। वो 4 गुण किसी में भी नहीं है, सब में है लेकिन परिपूर्ण मात्रा में नहीं है। जैसे ग्वालबाल भी बंसी बजाते हैं लेकिन कृष्ण बंसी बजाते हैं तो अलग बात होती है। सब लोग रूपवान हैं, गोपियाँ भी रूपवान हैं लेकिन भगवान का रूप जो है वो परिपूर्णता में है, राधा रानी का रूप जो है परिपूर्णता में, तो भगवत तत्व है वो। तो उसमें शिव तत्व जो है वो बड़ा विशेष है। शिव तत्व के अंदर एक ही व्यक्ति है, वो है शिव भगवान। जीव तत्व में हम सब लोग आते हैं, ब्रह्मा जी भी जीव तत्व में आते हैं लेकिन शिव तत्व में और कोई नहीं आता है। विष्णु तत्व भी अनंत है, कितने विष्णु के जितने रूप हैं वो वैकुंठों को नियंत्रण करते हैं, वैकुंठ का आधिपत्य करते हैं। और श्री कृष्ण भगवान भी एक है। तो इनका शिवजी का जो उगम है वो सदाशिव, जो स्वयं विष्णु स्वरूप हैं, वैकुंठ में उनका निवास है, उनके द्वारा शिव तत्व का निर्माण होता है। तो हमारे जो आहुति अर्पण करते हैं ना हम लोग, अनिरुद्धाय स्वाहा, प्रद्युम्नाय स्वाहा, उसमें हम सदा शिवाय स्वाहा करके भी आहुति अर्पण करते हैं। तो आइए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि राम 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 हरि हरि, वो दरवाज़ा खोल खुला छोड़ के जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे बच्चा आवाज कर रहा था। तो ब्रज का जो गौरव है वो शिव जी के गौरव के बिना पूरा नहीं हो सकता है। हमारे शिव जी का गौरव जो है वो इतना अमर्याद है कि सभी देवता, जितने भी देवता हैं, वो किसी भी देवता को ब्रज में निवास का अधिकार नहीं है, निवास नहीं कर सकते ब्रज में, वो आते और जाते हैं, चप्पल भी नहीं पहन सकते, अपना वाहन भी अंदर ला सकते नहीं, ब्रज के बाहर उनको रखना पड़ता है सब कुछ, चप्पल और वाहन। लेकिन शिवजी एक ऐसे भगवान हैं, जो देवता हैं, जो स्वयं उनके साथ उनकी पत्नी पार्वती, ये दोनों को भगवान ने चिरंतन ब्रजवास का वरदान दिया है। इसलिए आप देखेंगे ब्रज में सब जगह पर शिव जी हैं, हर जगह पर हैं। तो इनका दो प्रकार का दर्शन है, एक है देवता के रूप में, और देवता के रूप में भी वो इतने महान हैं कि उनके पिता ब्रह्मा जी हैं जो उनको जन्म देते हैं इस लोक में, इस लोक में उनके अवतार का जन्म का कारण बनते हैं, वो भी उनको महादेव के रूप में पूजते हैं। जब दक्ष राजा के यहाँ पर अपराध हुआ था तो ब्रह्मा जी ने स्वयं उनकी पूजा की है, तो ब्रह्मा के द्वारा, अपने पिता के द्वारा भी वो पूजनीय है, और सब देवताओं में एक ही सब देवता में वो एक ही महादेव हैं, बाकी वे महादेव के रूप में जानते नहीं किसी को। तो एक उनका स्वरूप देवता का है और एक स्वरूप है वैष्णव का। तो हमारे अंदर भी दो रूप स्वरूप होते हैं, दुनिया में हम एक रहते हैं, वैष्णवों के बीच में दूसरे रहते हैं। दुनिया में हम अपना व्यवहार करते हैं, कुछ धंधा नौकरी करते हैं, और जब भक्तों के संग में आते हैं तो दूसरी तरह से व्यवहार करते हैं। तो इसलिए ये जो वैष्णव स्वरूप है शिव जी का, ये बहुत ही अलौकिक है। भागवत में कहा गया कि वैष्णवानां यथाशंभु, सब वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव जो है वो शिव जी को माना गया है, इतना उनका स्थान है शिव जी का। और उनकी लीलाएं ब्रज के बाहर एक प्रकार की हैं देवता स्वरूप में, और ब्रज में उनकी अनंत लीलाएं हैं भक्त के रूप में। और जैसे हमारे भगवान कृष्ण हैं, वो कैसे कि जगत के नाथ हैं, वो जगन्नाथ हैं, जगन विश्व का निर्माण करते हैं, उनके द्वारा सृष्टि का नियंत्रण होता है, उनके द्वारा सृष्टि निर्माण होती है, उनका सब कुछ भगवान है उसकी। लेकिन वही भगवान जब ब्रज में आते हैं तो अलग रहते हैं ना, सब अपना भगवान का पद जो है वो छोड़कर आते हैं, उसको बंद कर दो दरवाजे को। तो भगवान भी जब ब्रज में आते हैं, ब्रजवासी बनकर, तो भगवान की तरह व्यवहार नहीं करते, वो भगवान की लीलाएं दिखाते, शक्ति दिखाते, लेकिन भगवान का पद जो है वो छोड़कर आते हैं, मतलब किसी को पता नहीं है कि भगवान है। जैसे कोई प्रधानमंत्री है, जब अपनी माँ को मिलने जाते हैं गुजरात में, तो प्रधानमंत्री बनकर मिलने जाता नहीं है, एक पुत्र बनकर मिलने जाता है। वहाँ पर प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं है, वहाँ पर एक पुत्र अपनी माँ से मिल रहा है। उस तरह से जब से भगवान यहाँ पर अलग व्यवहार करते हैं, तो ब्रज शिव जी भी यहाँ पर अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं, और बड़ा अद्भुत है वो, और बड़ा अद्भुत है वो। और ये हमको आज थोड़ा समझना है और देखना है, सोचना है उसके बारे में। जैसे यहाँ पर वृंदावन में हम बैठे हैं, तो वृंदावन में सबसे पहले हमारे पास गोपेश्वर महादेव है, है ना, गोपेश्वर महादेव, इतना उनका नाम पुकारते ही इतना उनकी महिमा मन में आ जाती है कि इतने महान उनका भाव है। सबसे बड़ी चीज जीवन में भाव होती है, भगवान किसी और चीज से आकर्षित नहीं होते हैं बिना भाव के, भगवान के लिए भाव ही सब कुछ है, बाहरी दिखावा कुछ भी हो। तो ये महादेव हैं, उन्होंने सुना कि ब्रज में भगवान रास रचा रहे हैं, तो भाग के आए, और भाग के आने के बाद सीधे रास मंडल में घुस रहे हैं, राजमंडल के द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। राजमंडल जो है ना, एक बहुत प्राइवेट एरिया है, सब जगह से बंद है वो, एक निकुंज है समझो, उसमें कोई कुंज जो होता है वो ओपन होता है, सब जगह से प्रवेश कर सकते हैं, ग्वाल बाल आते हैं, बंदर आते हैं, सब लोग आते हैं, लेकिन निकुंज में सब बंद होता है, ऊपर से भी बंद होता है, यानी कि पेड़ भी ऐसे उसको ऐसे कवर कर लेते हैं, ऊपर से भी कोई दर्शन नहीं कर सकता है, एक एंट्री होती है और एक एंट्री में सब सखियां खड़ी रहती हैं दरवाजे में, किसी को आने जाने देती नहीं है जो योग्य नहीं है उसके। तो तुरंत सखियां उनको रोकती हैं, ललिता देवी आती हैं, रोक देती है उनको कि आप कहाँ जा रहे हैं? हम रास मंडल में जा रहे हैं, भगवान रासेश्वर का दर्शन कर रहे हैं, रास लीला देखना चाहते हैं। नहीं 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 यहाँ पर तो केवल एक ही पुरुष को प्रवेश है, एक ही पुरुष आएगा यहाँ पर, दूसरा नहीं आ सकता है, बाकी सब स्त्रियाँ हैं, बाकी किसी को आना है तो सब केवल स्त्रियों को प्रवेश है। तो वो इतने आतुर हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, पूछते हैं कि क्या करना चाहिए उसके लिए, स्त्री बनने के लिए बोलो। सबसे बड़ी तो उनकी उनका जो गौरव यही प्रकट होता है, एक पुरुष होने पर सब चीज़, सब व्यक्ति को अपना एक अहंकार होता है ना कि मैं पुरुष हूँ, और वो जनानी एरिया में जाती नहीं है, और जनानी तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, और जनानी के बीच में बैठने में शर्म आती है उनको कि हम पुरुष हैं। इनको एक सेकंड का भी, 1% का भी संकोच नहीं है, सब प्रत्यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि क्या करना होगा स्त्री बनने के लिए बताओ, मुझे जाना है किसी भी हालत में। ये नहीं सोच रहे मेरी पत्नी देवी पार्वती जी क्या बोलेंगी, या और मेरे जो भक्त हैं मेरे। मेरे जो भक्त हैं, जो मेरे विरक्ति के लिए मेरी भक्ति करते हैं, भजन करते हैं मेरा, वो क्या कहेंगे कि हमारे भगवान तो श्री बन गए। उनको 1% की परवाह नहीं है। तो सखियों ने उनके भाव और उनकी उत्सुकता को देखते हुए बताया कि आपको जाके मानसरोवर में स्नान करना पड़ेगा, जहाँ राजा रानी रोई थी एक बार, उनको भगवान देर से आए थे रासलीला में, तो नाराज होकर वहाँ जाकर बैठ कर रोई थी वो, तो उनके अश्रुओं से वहाँ पर एक सुंदर मानसरोवर बना है। तो तुरंत वहां भागे, वो तुरंत ही भागे, यहां विचार नहीं किया क्या होगा कैसे होगा, थोड़ा सोचता हूं उसके बारे में, तुरंत गए। तुरंत वहां पर गोपियों ने कहा कि उनको कि अगर आप मानसरोवर में स्नान करोगे तो गोपी भाव और गोपी शरीर प्राप्त करोगे। तो जैसे ही स्नान किया उन्होंने, तुरंत सुंदर गोपी बन गए वो, वैसे ही झट से भाग के आए वो। उनको इतनी उत्सुकता है ना, क्या है ना उत्सुकता जो है ना, लौल्य कहते हैं उसको, लौल्य, लौल्य ये ना भक्ति की एक कीमत है। रूप गोस्वामी बताते हैं कि उत्सुकता, ईगरनेस, वो भक्ति प्राप्त करने का एक कीमत है जो हम चुकाते हैं। जिनके अंदर उत्सुकता नहीं है, हाँ आतुरता नहीं है भगवान के लिए, उनको भगवान प्राप्त होते नहीं है, भगवान को जरूरत ही नहीं आपको प्राप्त कराने की अपने आप को। जो आतुर होता है व्यक्ति, उसके लिए भगवान प्राप्त होते हैं। इनके पास इतने आतुरता है कि वो किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, मुझे भगवान चाहिए बस। और आ जाते हैं तो गोपियां उनको हंस हंस देती हैं उनको देखकर, क्योंकि गोपी भाव और गोपी शरीर प्राप्त होने का वरदान शिव जी को था, उन सांपों को नहीं था जो उनके ऊपर पड़े हुए हैं, है ना। ऐसे एक गले पर है, एक गले में, एक हाथ में है, एक सर पे है, सब जगह पर सांप ही सांप है। अब ये सुंदर कोई इसमें हमारी प्रीति राधिका दी में सांप, ऐसे 4-5 सांप लेके आ गई, तो उन लोग बोले अरे क्या है ये सब। तो ऐसे सुंदर युवती जो गोपी बनकर आ रही है, बहुत सुंदर युवती, उसके शरीर सर पे सांप, आ गले में सांप, हाथ में सांप, तो उनका ये उनको पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर क्या है, वो तो भाग रहे हैं, भाव से भाग रहे हैं। तो उनका ये भाव देखकर भी वो प्रभावित हो जाते हैं गोपियां। देखो उनको पढ़ी नहीं किस चीज की, क्या स्थिति है, उनको ये पता नहीं कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूं कि नहीं लग रही हूं, क्या लग रहा है पता नहीं है, बस उनको जाना है अंदर बस। तो उनका ये उत्सुकता और इनका ये विरक्त भाव देखकर ललिता विशाखा बड़ी प्रभावित हो जाती है, और अपने हाथ से इनका श्रृंगार करती है, उनको सुंदर गोपी बना देते हैं, और सजा धजा कर 16 श्रृंगार करके उनको अंदर ले जाते हैं, रास मंडल के अंदर ले जाते हैं, जहां पर अंदर रत्न सिंहासन पे श्री कृष्ण राधा रानी विराजमान हैं, उनकी सेवा हो रही है, गीत गाए जा रहे हैं, उनको यहाँ पर खड़े कर देते हैं, बोले ये चामर लो और चामर सेवा करो। तो भगवान की चामर सेवा करते हैं बहुत देर तक। ये सब रास का पूर्व भूमिका है, यानी रास की भावना भूमिका बढ़ाई जा रही है, रास तो शुरू होना बाकी है अभी, तो रास के पूर्व हिस्से में ही इनको चामर सेवा प्राप्त होती है। फिर ललिता देवी उनको अपना हाथ पकड़ के पूरे दरवाजे पर ले आती है रास मंडल के, और बड़ी प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देती है कि अभी आप यहीं खड़े रहो और यहीं रास का दर्शन करो, और रास मंडल की रक्षा भी करो, कोई यहाँ पर अयोग्य व्यक्ति ना आए, जिसकी योग्यता है वही आ जाए। तो इसलिए आज भी वहां पर बैठे हो गोपेश्वर महादेव, बिल्कुल रास मंडल के बाहर है। और वहीं से रोज रास दर्शन करते हैं और रास मंडल का दर्शन और रक्षा भी करते हैं। ऐसे जगह जगह पर उनको पवित्र स्थानों की रक्षा करने के लिए स्थान दिया गया है। तो इस एक भाव से अभी वो मैंने उस दिन रणवारी गया था तो उधर भी जब कामदेव ने भगवान को और भगवान के गोपियों को ग्रस्त करने का प्रयास किया तो शिवजी वहां पर प्रकट हो गए कि शिवजी ने एक बार कामदेव को भस्म किया था तो वो भगवान और भगवान के गोपियों पर कामदेव का असर ना पड़े, कामदेव डरते हैं उनसे इसलिए वहां पर खड़े हो गए। तो उधर भी उनको जब भगवान ने रास रचाया और कामदेव को वैसे परास्त कर दिया तो उधर भी शिवजी को खड़ा कर दिया है रास मंडल के बाहर। नहीं, बाबर भी उनका वही भाव है। फिर उनकी अनेक कहानियां हैं, जैसे एक गोगे गोपेश्वर महादेव हमारी रणवारी, ये छाता के पास में है। रणवारी वो जगह है जहाँ पर भगवान और कामदेव ने भगवान को अपने पुष्प बाणों से विद्ध करने का प्रयास किया था। तो भगवान ने सभी सारी गोपियाँ उनसे प्रभाव से ऑलरेडी विद्ध होने लगी थी तो भगवान ने हर एक गोपी के सामने एक एक स्वरूप खड़ा कर दिया अपना। और भगवान का स्वरूप खड़ा करते ही वो कामदेव का जो असर था वो नष्ट हो गया। कामदेव के भाव से मतलब ये युद्ध कैसा है, कोई ऐसा शस्त्र अस्त्र और आवाज और गर्जना ऐसा युद्ध नहीं है। एक व्यक्ति अपना प्रभाव डाल रहा है और दूसरे व्यक्ति प्रभाव को नष्ट कर रहा है। सूक्ष्म युद्ध है बहुत ही। तो भगवान के प्रकट होने की वजह से सारी गोपियां जो है ना वो कामदेव के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। इस तरह से कामदेव हतबल हो जाता है, यानी ही गेट्स डिफीटेड। तो भगवान ने फिर कामदेव को आदेश दिया कि रणवारी जगह पर किसी भी व्यक्ति को, ब्रजवासी को आपको विद्ध नहीं करना है, ये जगह पे आपको किसी को टच नहीं करना है। बड़ी सुंदर जगह है वो। तो अभी भुवनेश्वर आप सोचेंगे, वो भी उनका विशेष स्थान है क्योंकि जब पौंड्रक नाम के राजा का युद्ध हुआ था भगवान से, हाँ आप सबको पता है पौंड्रक ऐसा एक व्यक्ति था जिसको कभी एक बार दुख हुआ था बहुत किस चीज़ का, तो वो डिप्रेशन में गया था। तो उसके दोस्तों ने उसको बताया कि तुम भी स्वयं ही भगवान हो, आप जानते नहीं हो भगवान हो। तो उसके मन की क्या कहते हैं उसको, तनाव या दुखी स्थिति को तारण करने के लिए उन्होंने उनको ऐसा ही बहका दिया उसको। तो उसको भी लगा कि मैं भगवान हूँ। और एक दिन तो फिर भगवान के दो भुजा लगा कर चक्र शंख चक्र पद्म गदा धारण करके वो ऐसे खड़े हैं और राज्य भी चलाते, राजा भी थे वीर थे, ऐसे नहीं थे पागल थे। अब एक दिन भगवान को खत भेज दिया उसने कि तुम नकली भगवान हो, नकली वासुदेव बनकर यहाँ रह रहे हो और मेरे शंख चक्र धारण करके उधर लोगों को बहका रहे हो। मैं आ रहा हूँ, अच्छी तरह से मेरे कहने से तुम ये सब मेरे जो चिन्ह हैं लौटा दो मुझे, नहीं तो मैं तुम पर आक्रमण करूंगा और बलपूर्वक उसको छीन लूंगा जो तुमने नकली धारण करके खड़े हो, खुद नकली बनकर धारण किए हैं और असली को चैलेंज कर रहे हैं। तो संदेश लेकर कोई आता है तो भगवान ठाका मार के हंसते जोर से, सब द्वारका के मंत्री भी हंसते हैं, उसको खत लेके बोलते हैं कि हाँ हम अभी देने को आ रहे हैं, आप हमारे जो आपके जो लिए हुए नकली चक्र गदा शंख पद्म जो है वो देने के लिए आ रहे हैं। तो भी रणभूमि में आता है तो रणभूमि में ऐसे चार भुजा धर के ऐसा आता है रथ में बैठकर, तो भगवान उधर भी देखे जोर से हंसते उसको और फिर भगवान चक्र चलाते हैं उसके ऊपर और उसका वध कर देते हैं। तो जब वो पौंड्रक युद्ध करने को आता है ना तो उस समय उसका एक मित्र है काशीराज, वो काशीराज भी साथ में है। वो बोल रहे हैं कि मैं भी आपके संग चलूंगा क्योंकि वो भगवान के भी द्वेष करने वाले हैं। तो काशीराज को भी वो मार देते हैं चक्र, भगवान उसको मार देते हैं। फिर भगवान, अभी काशी क्या है, काशी शिवजी की नगरी है, शिवजी ने उसको बनाया था इसलिए, उनको कोई इच्छा नहीं है लेकिन शिवजी ने इसलिए बनाया था कि पार्वती की मतलब उस समय सती देवी थी पार्वती उसके जन्म के पहले, तो उसके पिता उसको बहुत घटिया मानते थे, बोले क्या जमाई है ये, कुछ धन नहीं, कुछ नहीं, कुछ साधन नहीं है, फकीर बन के रहता है वो, स्मशान में रहता है वो, मुर्दों की राख लगा देता है। अब मैं प्रजापति हूँ, अपना एक पोजीशन है, और 10 कन्या है उसका, तो ऋषियों के साथ विवाह हो गया। वो 11वीं कन्या मानती नहीं है, तो अपने आप तपस्या करके शिव जी से विवाह कर ले। तो शिव जी को बड़ा ऐसा बोलते, ये हमारी गिनती में नहीं है, इसको कहीं भी बुलाना नहीं। तो इसलिए शिव जी ने वो काशी नगरी बसाई थी कि भाई अपने पत्नी का भी एक होता है ना स्टेटस, उसका सम्मान रखने के लिए उन्होंने काशी नगरी बनाई थी। अरे इतनी सुंदर बनाई थी, इतनी सुंदर ऐश्वर्य संपन्न कि देवताओं की अमरावती भी तुच्छ है उसके सामने। तो काशी में अभी भी सब शिव जी का स्थान है, शिव जी वहां के अधिप मतलब राजा हैं। तो काशी राज आए उधर से इसका सहायता करने के लिए, तो भगवान ने उसका भी वध कर लिया। तो उसका पुत्र जो है वो, उसने भी कहा था कि पापा मैं भी आता हूँ इस युद्ध में, तो काशीराज ने कहा कोई जरूरत नहीं है, मैं काफी हूँ, तुम रहो आराम से। वो बड़ा शिव जी का भक्त था, वो कहता था तुम भजन करो शिव जी का आराम से, मैं देख लूंगा इसको, कोई जरूरत नहीं, आप आराम से रहो। और वो कहता है अपने पत्नियों को कि मैं अभी जाऊंगा ना तो श्री कृष्ण का सर लेके आऊंगा और आप लोगों को भेंट करूंगा। तो रानियां उसकी बड़ी प्रेम से तिलक करती हैं उसके, अभी जाके शत्रु का सर लेके आएगा। भगवान क्या करते, जब काशीराज को बाण मारते ना, ऐसा बाण मारते हैं कि न केवल वो बाण से उसका सर कट जाता है, लेकिन बाण वो सर को लेके काशी में जाके गिर जाता है, और काशीराज के सीमा में वो जाके सर गिर जाता है। तो सब रानियां और सब खुश होकर आते हैं, अरे भगवान जैसे मेरे पति ने कहा था, देखो शत्रु का सर फेंक दिया उसने हमारे राज्य में आकर। और बहुत जोर से हंसी खुशी में आते, देखते हैं तो क्या है, अपने ही पति का शव, पति का सर, तो बड़े दुखी हो जाते हैं। तो पूजा में बैठे हुए सुदक्षिण जो उसका पुत्र है, उसको खबर पहुंचती है कि अरे बजाय बगैर शत्रु के सिर के मेरे पिता का ही सर आ गया। थोड़ा क्रोध से पागल हो जाता है और ब्राह्मणों को बुलाता है, बोलता है मुझे तुरंत यज्ञ कराओ, ऐसा यज्ञ कराओ जिस यज्ञ करने से शत्रु का वध करने की शक्ति प्राप्त हो। तो तुरंत ब्राह्मण लोग एक तांत्रिक यज्ञ करते हैं, तांत्रिक ब्लैक मैजिक टाइप बोलते हैं उसको। तो यज्ञ कर, वो यज्ञ करने से, तांत्रिक यज्ञ करने से एक भयंकर राक्षस उत्पन्न होता है, उसका नाम क्या है पता नहीं मुझे, उसका भी एक नाम है भयंकर, लाल बाल उसके, लाल कोयले जैसी आंखें, आकाश में उसका सर पहुंचा हुआ है, सब शरीर भयंकर कोयले जैसा, दांत बाहर आ गए, इतना अग्नि वो उगल रहा है, भयंकर गर्जना करता है, बताओ आज्ञा क्या है हमारे लिए, जाओ द्वारका में जाओ और द्वारका का ध्वंस करो और द्वारकाधीश का भी वध करके आ जाओ, जाओ हमें खुशखबरी दो। और वो बैठा है, फिर भगवान जो है वो पौंड्रक को मार के अपना आराम से घर पे गए हैं, रुक्मिणी के साथ में चेस खेल रहे हैं, द्यूत चौसर बोलते ना उसको, वो खेलने को बैठे हुए हैं। तो उतने में ये आदमी जो है सुदक्षिण का जो बनाया वो राक्षस है, वो द्वारका में प्रवेश करता है और जलाते हुए ऐसा अंदर आता है, वो हाहाकार मचाते हुए द्वारकावासी ऐसे भाग कर उनके सब छोड़कर भागते हैं भगवान के महल की ओर, त्राहिमाम करके, और भगवान के अंदर महल में भगवान जहाँ खेल रहे हैं वहाँ पर संदेश पहुँचता है कि ऐसे ऐसे कोई भयंकर राक्षस आया हुआ है। तो भगवान आराम से ऐसे देखते हैं, लोग चिंता मत करो आराम से रहो, मैं भी सब इलाज करता हूँ। तो वो चक्र को बुलाते हैं, मुझे जाओ इसका इलाज करो, और फिर चौसर खेलने बैठ जाते हैं। चक्र जाते हैं और चक्र और इनके बीच भयंकर युद्ध होता है। तो चक्र जो है वो निहारे का असर छोड़ते हैं, ऐसा असर छोड़ते हैं कि ये जो अग्नि बनकर आया हुआ है वो बर्फ बन जाता है, मतलब इसकी शक्ति जो है वो अग्नि के भाव में है, मतलब टेम्परेचर में है, उष्णता में शत्रु शक्ति है, उससे वो लोगों को परास्त कर रहा है, त्रस्त कर रहा है। तो उसको पूरा ठंडा कर देते हैं, जैसे कि जैसे चार्ज किए मोबाइल को डिस्चार्ज करते हैं ना हम लोग, ऐसे पूरा डिस्चार्ज कर देते हैं उसको। तो वो जैसे समझता है कि मेरी शक्ति क्षीण हो गई है, तो वो भागता है वहां से और सीधे वहां पहुंचता है जहां पर ये सुदक्षिण बैठा हुआ है, वो ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं, और वो कैसा होता है ना, वो कैसे होता है ना, कंट्रोल रूम में बैठकर वो अपना मिसाइल लोग छोड़ते हैं ना, मिसाइल्स का छोड़ते हैं ना, पता है ना आपको कैसे, ये बंद कमरे में बैठते हैं कभी कभी, जमीन के अंदर 4 मंजिल अंदर बैठते हैं और वहां से वो बटन दबाकर शस्त्र छोड़ते हैं और इसको मारो, इस कंट्री को मिसाइल भेजो, इस तरह से वो बैठे हैं उधर कि हमारा मिसाइल जो है अभी गया हुआ है द्वारका, लेकिन देख रहे लौट के आ रहा है। अभी तांत्रिक चीजों का एक होता है प्रॉब्लम कि तंत्र के द्वारा की हुई शक्ति जो है ना, वो किसी उद्देश्य, समझो किसी को मारने के लिए शक्ति बनाई गई है, और वो अगर मारने में सफल नहीं हुआ वो व्यक्ति, वो शक्ति, तो वो शक्ति आकर उस व्यक्ति को नष्ट करती है जिसने उसको बनाया था। इस बीच में सुदक्षिण जब शिव जी को प्रसन्न करते हैं, शिव जी के लिए यज्ञ करते हैं और इसको प्रसन्न करके वो राक्षस को तैयार करते हैं, तो शिव जी को बोलते हैं कि मुझे भी आपका सहारा चाहिए, मुझे शत्रु का वध करने में मदद कीजिए आप। तब जाकर राक्षस का निर्माण करने का शिवजी उसको गाइडेंस देते हैं कि ऐसा ऐसा मंत्र या तंत्र का यज्ञ करो और फिर राक्षस पैदा होगा। और ऐसा बोलते हैं कि जब भी तुम युद्ध करोगे, तुम्हारा युद्ध होगा, मैं स्वयं मेरे गणों के साथ में तुम्हारे पक्ष में युद्ध करूंगा। तो वो युद्ध में पौंड्रक भी है, काशीराज भी है और सुदक्षिण भी आने वाला था लेकिन उसका राक्षस है, और उसमें शिवजी भी युद्ध में है। देखो कितना स्थिति भयंकर है। तो चक्र क्या करता है, पहले सुदक्षिण को भगा देता है, फिर वो जब पहुंचता है वहां पर तो पहले वो खुद जाकर सुदक्षिण को और सारे ब्राह्मणों को मार देता है, क्योंकि उसका शक्ति रिवर्स होता है ना। तो उस चक्र उसको मेहनत नहीं करते, मालूम है उसको कि जाएगा और उनको वध कर देगा। उसके बाद चक्र जो है वो सारी काशी को ध्वंस कर देता है, जलाकर राख कर देता है और शिवजी के पीछे लग जाता है और शिवजी सब भाग रहे हैं। शिवजी के पीछे चक्र लगा हुआ है कि शिवजी आके भगवान के चरण में शरण लेते हैं, तो भगवान गोदरा प्रेम से डांटते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, अभक्तों के साथ पक्ष लेकर युद्ध कर रहे हो। तो शिवजी बड़े नम्रता से कहते हैं, लीला है भगवान की, ये कोई सत्य नहीं है, ऐसे लीला है भगवान की। वो कहते हैं कि मैंने बहुत देर तक राक्षसों का संग किया, इसलिए मेरी मति भ्रष्ट हो गई, इसलिए मैंने ऐसा कार्य किया। अभी मुझे ना आपके संग की आवश्यकता है, वैसे भी मेरा घर तुमने जला दिया है, भगवान ने अपने भक्त का घर जला दिया पूरा कंप्लीट, जगह नहीं अभी, अभी वैसे भी घर नहीं है, अभी आपके पास अगर संग मिलेगा, मुझे आसरा मिलेगा तो अच्छा रहेगा। भगवान ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ के रूप में रहता हूँ, वो शंख के आकार का है, उसके पास एक एकाम्र वन है, वहाँ पर मैं आपको निवास दूंगा और ऐसा वरदान दूंगा आपको कि जो लोग जगन्नाथपुरी में मेरा दर्शन करने को आएंगे वो आपका दर्शन पहले करेंगे, मेरा बाद में करेंगे, तब उनको मेरा दर्शन का लाभ शुभ होगा, उनके लिए परिपूर्ण होगा। और जगन्नाथपुरी आएंगे और आपके पास नहीं जाएंगे तो उनका जगन्नाथपुरी का यात्रा पूरा फेल है, और मुझे जो भोग लगाया जाएगा वो पहले आपको वहाँ पहुँचाया जाएगा, मेरे चरणामृत का पानी जो है वो आपके ऊपर डाला जाएगा। ऐसे बहुत सारे वरदान दिए उनको, तो वो भुवनेश्वर में भुवनेश्वर के रूप में वहाँ पर विराजमान हो गए। और कैसा है, आपने कभी किसी देखा है किसने भुवनेश्वर दर्शन किया है? जो शिवलिंग है ना वो ऐसे क्या कहते हैं उसको, ऐसे कप की तरह है, वो शिवलिंग हमेशा ऊपर होता है ऐसे गोल, लेकिन ये ऐसा नहीं है, वो हमारे त्र्यंबकेश्वर में भी ऐसा ही है, वो अंदर ऐसे क्या कहते हैं उसको मराठी में कहते हैं खोलगट, खोलगट का मतलब क्या है, ऐसे गड्ढा होता है उसका, और गड्ढे में ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन होता है, गणेश जी का दर्शन होता है। तो वो जो गड्ढा है उनका वो ऐसा लंबा है एक चीज़ और एक ऐसे गड्ढा है, और वो गड्ढे में उतने साइज का शालिग्राम शिला उसके ऊपर रखा हुआ है, तो लगता है ऐसे गोल लेकिन है वो गोल शालिग्राम शिला जिस वो जो गड्ढे में रखी हुई है। ये सब मुझे पता नहीं था पहले, लेकिन मैं जब एकांत में एक बार गया था भुवनेश्वर में, तो भुवनेश्वर के पुजारी बड़े फ्री थे उस समय, 9 बजे, अकेले थे, कोई यात्री वात्री नहीं था, तो मुझे आकर दिखाया उन्होंने कि ये शिवलिंग नहीं है एक्चुअली, शिवलिंग जो है गड्ढे की तरह है लेकिन उसमें शालिग्राम शिला रखी गई है, और हम लोग जब भोग लगाते हैं तो गोपाल मंत्र कहकर भोग लगाते हैं, और वो गोपाल जी पहले शालिग्राम के रूप में स्वीकार करते हैं, फिर वो शिव जी उसका स्वीकार करते हैं, फिर वो बाहर आता है। इसलिए भुवनेश्वर में सब वैष्णव प्रसाद पाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कृष्ण प्रसाद है। ये भी हमारे जो माधवानंद प्रभु हैं, जो गौर गोविंद महाराज के शिष्य हैं, उनके जगन्नाथपुर की किताब में ये रहस्य का भेद किया है। नहीं तो वैसे वैष्णव लोग शिवजी का प्रसाद नहीं खाते हैं, क्योंकि शिवजी के भक्त जो हैं अधिकतर राक्षस होते हैं, स्वार्थी होते हैं, और वो स्वार्थ के लिए उनका पूजन करते हैं, और उनको क्या मांस अर्पण करते हैं, कोई बकरी अर्पण करते हैं, कुछ बलि देते हैं, तो वो सब शिवजी का जो प्रसाद है वो आमतौर पर भक्त लोग नहीं खाते हैं, लेकिन भुवनेश्वर का प्रसाद बड़े प्रेम से खाते हैं, उनका चरणामृत भी प्रेम से पीते हैं। तो ये भुवनेश्वर हो गया। फिर रामेश्वर के रूप में शिवजी महाराज जो है भगवान लीला करते हैं, उनके साथ में अपने भक्त को स्थापन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जैसे हमारे शिवजी ना बड़े विचित्र उनका पोजिशन है, और इन्होंने अपने पत्नी को इतना कृपा किया, पत्नी को विष्णु का मंत्र दिया कि दोनों ने मिलकर विष्णु मंत्र का जप किया तो भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया और भगवान विष्णु ने उनको राधा मंत्र दिया और राधा मंत्र के साथ उन्होंने 90 दिन का व्रत दिया उनको दोनों को। तो दोनों पति पत्नी ने मिलकर 90 दिन का व्रत किया है। उस व्रत का ब्रह्म वैवर्त में वर्णन आता है कि एक फूल होता है सौगंधिका नाम का, वो सौगंधिका नाम का फूल जो है ना वो 1000 पंखुड़ियों का कमल होता है, 1000 पंखुड़ियाँ वो भी सुगंधित। आपने सुना होगा ना द्रौपदी वगैरह वो वनवास में थे तो ऐसा एक फूल उड़कर आकाश से आया था। द्रौपदी बड़ी मोहित हो गई थी, ये फूल मुझे चाहिए, भीमसेन को कहा। तो भीमसेन उसकी खोज में गए कहाँ से आया उड़ के, तो रास्ते में हनुमान जी का दर्शन हुआ उनको। तो वो तो अलग लीला है, लेकिन उसके बाद में फिर जाते हैं वो सौगंधी का, देखते हैं कि मान सरोवर में इसका निर्माण हो रहा है। तो मान सरोवर जो है ना, ये तो मानस ये कौन सा, ये मान सरोवर है और वो मानस सरोवर है जो हिमालय में है। और उसमें गण जो है गणेश जी के और शिव जी के जो गण हैं उनके द्वारा रक्षित और उनके द्वारा मदद करके सेवा प्राप्त करके वो पार्वती देवी सौगंधिका कमल का उत्पादन करती थी। दिन में हर एक कुछ संख्या होती थी उसकी और हर दूसरे दिन डबल संख्या उसकी, तो उसके आगे उसकी डबल संख्या, ऐसे 90 दिन का व्रत किया तो कई लाखों फूल लास्ट में अर्पण करने पड़े डबल 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 होते हुए। सारा बहुत इलेबोरेट उसका व्रत है। तो पार्वती देवी ने और शिव जी ने वो राधा मंत्र का जप करते हुए त्रैमासिक व्रत किया है 90 दिन का। उसके त्रैमासिक व्रत के सफल आयोजन के सफल होने के पश्चात राधा कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया उनको और उनको आशीर्वाद दिया कि आप ब्रज में रहो। तो दोनों पति पत्नी जी को सब जगह पर उनका निवास है। 4 देवियां हैं ब्रज में, 4 महादेव हैं, हाँ चारों कोने में उनका निवास है। जैसे मथुरा में भूतेश्वर हैं, वृंदावन में गोपेश्वर हैं और नंदगांव में नंदीश्वर हैं और गोवर्धन में चक्रेश्वर हैं, काममोन में कामेश्वर हैं, बरसाना में कौन है, ब्रजेश्वर महादेव हैं। तो बरसाना में जो ब्रजेश्वर महादेव, मूल बरसाना के महादेव हैं वो, ब्रजभानु महाराज ने उनका पूजन किया था राजा रानी की प्राप्ति करने के लिए, ब्रजेश्वर महादेव है। काम वन में जाकर भी ब्रजभानु महाराज ने कामेश्वर महादेव का पूजन किया था। चक्रेश्वर महादेव का लीला ऐसा है कि चक्रेश्वर महादेव उस स्थान पर रहते हैं जहां पर चक्र ने जब भगवान का सेवा किया ना गोवर्धन पर्वत की लीला में, चक्र को क्या सेवा दिया था मालूम है आपको? यस, गोवर्धन की लीला में चक्र की क्या सेवा थी? नहीं, बाहर नहीं करते थे, बाष्प बना देते उसको। उन्होंने बताया कि अरे इतनी भयंकर शक्ति इंद्र की, जो विश्व विनाशक शक्ति है ना, वो संवर्तक बादल के रूप में। हाँ याद रखना, कभी भूलना नहीं इस बात को। तो भगवान ने कहा कि ऐसा परास्त करूंगा इसको ना, तो पूरा अहम से निकल जाना चाहिए, उसका घमंड जो है उसके ऊपर। तो इसके अपने मूसलधार, यानी कि मूसल होता ना, मूसल जो हम लोग कूटते हैं मसाला, इतना बड़ा होता है, इतना कि लंबा इतना मोटा, वैसे एक बूंद है उसकी बारिश की, इतना इतने भयंकर बूंद और ऐसी घनघोर वर्षा कर रहे हैं उससे। तो इतने मूसल गिर रहे हैं सर पे, देखो आप समझ सोच लो उसकी कैसा होगा वो। उन्होंने चक्र को आदेश दिया इसके एक बूंद भी जमीन का स्पर्श नहीं करना चाहिए, आकाश से वो गिरते पहले उसका बाष्प होकर ऊपर जाना चाहिए वो, नहीं तो क्या फायदा है उसका। अगर भगवान ने केवल छत्र उठाया होता गोवर्धन का और वर्षा गिर रही है साफ पानी सब साइड से आ रहा है तो क्या होता था, सब अंदर से वो भीगते थे, यहां तक पानी था उनके, गोवर्धन को उठाए रखा है लेकिन पानी अगर जमा हो गया तो फिर क्या फायदा है उसका। जमीन पर कोई पानी नहीं गिरा, कोई पानी इकट्ठा नहीं हुआ, कोई तालाब नहीं बना, कोई समुद्र नहीं बना उसका। चक्र को बोला ऐसे घूमो, ऐसे चक्र लगाओ अपना चारों ओर से कि अपनी अग्नि से सारा जल बाष्प कर दो। तो कोई बूंद जमीन पर गिरा ही नहीं, जो गिरा वो गोवर्धन पर गिरा, नीचे जमीन पर कोई गिरा नहीं। तो चक्र ऐसे लगातार 7 दिन तक घूमते रहे ऐसे गोल गोल चक्रकार, और सबको बाष्प को पानी को बाष्प बना दिया। फिर जब लीला समाप्त हुई तो चक्र ने भगवान को विनती किया, भगवान प्रसन्न थे उनके ऊपर, बोला क्या आशीर्वाद चाहते हो? तो उसने कहा मुझे इसी लीला स्थली में स्थान दो ताकि मैं भी यहाँ निवास करूँगा। तो सुदर्शन चक्र जो है उसको मानसी गंगा के बीच में, मतलब तो गिरिराज के बीच में मानसी गंगा है, वहाँ पर उन्होंने स्थान दिया। तो वो चक्र स्थली है। तो वहीं पर महादेव का निवास है, उसका नाम है चक्रेश्वर महादेव। और चक्रेश्वर महादेव वहाँ पर गोवर्धन विभाग जो है उसकी रक्षा करते हुए रहते हैं। तो चक्र तो लीला हुई थी स्वापर युग में, लेकिन कलयुग में वहां पर सनातन गोस्वामी रहने को गई। चक्रेश्वर महादेव के ठीक सामने आज भी उनके भजन कुटी है। यहाँ पर जब मदन मोहन जी मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हुआ ना, तो कृष्णदास ब्रह्मचारी को अपना ठाकुर जी की सेवा सौंप कर सनातन गोस्वामी भजन करने के लिए गोवर्धन चले गए। वहाँ पर भी रहे हैं और पावन सरोवर के किनारे भी रहे, उनकी भजन कुटी वहाँ पर भी है। तो चक्रेश्वर महादेव में रहकर जब सनातन गोस्वामी भजन करते थे, उनको बड़े मच्छर काटते थे बहुत। वो मतलब आपको कभी मीरा रोड में आना चाहिए कि मच्छरों का आतंक का मतलब क्या होता है, वो जानने के लिए। एक ज़माना था हमारे मीरा रोड के अंदर कि रोड पर अगर आप जमाई देंगे ऐसे, कभी जमाई आ गई आपके, तो जमाई होने के बाद क्या होता है, जल्दी मुख बंद नहीं कर सकते आप जब तक आपका जमाई पूरा नहीं हो जाता है। उतने समय में एक 50-60 मच्छर मुंह में घुस जाते थे, इतने मच्छर चल रहे, तो सर पे हजारों मच्छर घूम रहे, हाथ में घूम रहे, इधर काट रहे उधर काट रहे, मुंह में इतने बैठे काट रहे हैं। ऐसा एक समय था अस्पताल के, हमारे जो था ना कंस्ट्रक्शन चालू था उस समय का, इतना आतंक था मच्छरों का, मतलब जगह जगह मिलियंस एंड मिलियंस मच्छर थे। तब ऐसा आतंक था उस समय चक्रेश्वर महादेव के पास, और इनके भजन में बाधा आ रही थी उनको मच्छरों से मतलब, लेकिन उनका भजन जो है ना वो ठीक से नहीं हो रहा था। तो एक दिन उन्होंने तंग आकर तय किया कि मैं भी जाता हूँ यहाँ से भी, मुझसे यहाँ पर भजन नहीं हो रहा है, इतना कीटकों का इधर मच्छरों का आतंक है। जाने लगे तो चक्रेश्वर महादेव जो है ना वो परेशान हो गए, वैष्णव है ना वो, थोड़ी यहाँ पर देवता के भाव में बैठे हैं, तो वैष्णव का संग करने के लिए बैठे हैं, सामने बैठ के भजन कर रहे थे, उनका संग ले रहे वो, तो जाने लगे तो बड़ा दुख हुआ उनको। तो शिवजी महाराज ब्राह्मण का रूप लेके पीछे भी चल रहे, महाराज जी कहाँ जा रहे हैं आप, महाराज जी रहो आप, बोले नहीं बेटा क्या करूँ, मच्छर इतने काटते हैं कि मेरा भजन नहीं होता है, मैं कहीं और जाऊँगा। तो बोले महाराज एक दिन तो कम से कम रुको, कुछ करते हैं इलाज उसका। तो बालक के मीठी मीठी बातों से प्रभावित होकर वो रुक गए। तो शिव जी ने क्या किया, सीधे स्वर्गलोक में गए इंद्र के दरबार में, और जो देवता कीटकों का नियंत्रण करता है, हाँ आपको पता है इस बात का, कभी सुना है आपने ऐसा कभी, इस दुनिया में हर चीज जो है ना वो नियंत्रित है। जैसे हम लोग खाते हैं ना यहाँ से, तो यहाँ से नीचे उतरता है, तो यहाँ से नीचे उतरने के लिए जो मार्ग है उसका भी एक नियंत्रक देवता है। फिर पेट में जो हजम होता है ना, अग्नि निर्माण होता है, उसके भी एक देवता है। उसके आगे जाकर जो है वो आगे बढ़ता है खाना, उसका शोषण होता है, पचन होता है उसका। हर चीज़ के देवता है, बड़े हाथों के भी देवता है, आँखों के देवता है, मन की भी चंद्र देवता है, आरोग्य के सूर्य देवता है, प्रकाश और उष्णता के साथ आपका हर एक अंग एक देवता के द्वारा नियंत्रित है। आपके कान की शक्ति जो है वो एक देवता के द्वारा नियंत्रित है, आपके बोलने की शक्ति जो कंठ जो है वो भी किसी देवता के द्वारा नियंत्रित है। तो वो जाते हैं कीटकों के नियंत्रक देवता के पास, उनको आदेश देते हैं कि हमारे इलाके में किसी मच्छर का आतंक नहीं होना चाहिए। संत परेशान हो गए यहाँ पर। देखो महादेव का भाव देखो आप, संत के लिए ब्राह्मण बनकर आ रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, उनका संग जो है छोड़ने को उनको दिल नहीं कर रहा है, इसलिए उनको एक दिन का समय मांगकर गए ऊपर और वो देवता को आदेश दिया। उस क्षण से सब मच्छर गायब हो गए वहां पर, और जीवन के अंत तक फिर 1680 तक उन्होंने वहां पर भजन किया, फिर शरीर छोड़ा। इतने व्याकुल हैं वो वैष्णव के संग के लिए, सोचो आप। और आज भी कहते हैं वहां पर मच्छरों का और कीटकों का आतंक नहीं है, आज भी नहीं है। चक्रेश्वर महाराज वहां पर विराजमान है, तो वहां हमने भजन कुटी है उनकी। ऐसे शिव जी हमारे। फिर आप चलो बरसाने में, ये तो ब्रजेश्वर महादेव हो गए, एक गौरी कुंड है वहां पर, तो गौरी कुंड में शिव जी आते हैं। और आप मालूम है बरसाने में तो कोई सखी के बिना प्रवेश नहीं कर सकता है, सखी बनना पड़ता है। तो ये आकर वहां सखी बनने की मतलब ड्रेसिंग कर रहे हैं, अपना श्रृंगार कर रहे हैं, तो नहीं हो रहा है उनसे, वो अपने आप तो नहीं हो रहे हैं, उधर भी ललिता ने किया था श्रृंगार उनका, तो कोशिश कर रहे हैं। तो फिर वो उनकी जो अगतिकता है श्रृंगार करने में कठिनाई हो रही है, तो गौरी जी प्रकट होती हैं, गौर तेज उनका प्रकट होता है उनके साथ में, तो पूरा कुंड ऐसा प्रकाशित हो जाता है गौर तेज से, इसलिए उसका नाम गौरी कुंड रखा गया है। एक नाम माहेश्वरी सर भी है और एक नाम बिहार कुंड भी है, दोनों भगवान ने वहाँ विहार किया है। और माहेश्वरी सर इसलिए कहा गया कि महेश्वर जो है महेश्वरी बनते हैं वहाँ पर जाकर, महेश्वर श्री कृष्ण जो अपने शिवजी महाराज जो है वो महेश्वरी बन जाते हैं। तो गौरी प्रकट होकर कहते हैं कि अरे आप लोगों को कैसा पता है कि श्रृंगार कैसे करते हैं हमारी औरतें, हम औरतें अभी हम आपका श्रृंगार करते हैं। इसलिए गौरी जी शंकर जी का श्रृंगार करते हैं। कहते फिर अभी जाओ श्रृंगार करके भेजते जाओ, राधा रानी को पुकारो। और वो भी चले जाते हैं उनके पीछे पीछे, और गोपी बनकर उनके पति देव भी आगे जाकर उनको पुकार रहे हैं। कितना बड़ा भाव है देखो उनका, राधा रानी को पुकारने के लिए ब्रज में जाते हैं, बरसाने जाते हैं। जैसे शिवजी की अनंत लीला है, हर कदम पर भगवान की लीला में उनकी सहायता है। उनकी भगवान को ब्रज में उन्होंने कितना सहायता किया है हर जगह पर। भूतेश्वर महादेव में कंस महाराज उनकी पूजा करते थे, क्या चाहते थे कि मेरे शत्रु का वध हो, इस भावना से उनकी पूजा करते थे। लेकिन बड़े भोले हैं हमारे शिव जी महाराज, उनका नाम आशुतोष है। आशुतोष, आशुतोष का मतलब क्या होता है बताओ? बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और उसका उल्टा क्या होता है कि बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है उनको। तो कामदेव जब आए थे ना, तो शिवजी महाराज बैठे थे त्याग तपस्या में बैठे थे, और इनका वैराग्य देखो आप। ये अपने अन्नपूर्णा जी जो हैं, उनकी पत्नी पार्वती जी इतनी सुंदर हैं, उनका सौंदर्य का क्या वर्णन करें। ऐसी सुंदर पत्नी को गोद में लेकर बैठ कर वो विरक्ति के विषय में प्रवचन करते हैं, और उनके सामने कौन सुन रहे हैं उनका प्रवचन? जो ऋषि मुनि हैं, जो सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनकर बैठे हुए हैं और विरक्त भाव का आचरण करने के लिए प्रेरणा चाहते हैं, और शिव जी से विरक्ति बनाए रखने के लिए कथा सुन रहे हैं, और शिव जी अपनी सुंदर पत्नी को गोद में बैठ पिटाकर कथा सुना रहे हैं। उनके शिष्यों को कोई डाउट नहीं है। देखो आप कितने उनके शिष्य को जो लग रहा है, शिष्यों को उनके बारे में क्या लग रहा है, अरे समझो मैं अभी मेरे पत्नी को गोद में लेकर आपकी कथा कर रहा हूं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, क्या प्रभु जी को क्या हो गया है, व्हाई इज ही डूइंग दिस। पर उनके शिष्यों को कोई परेशान नहीं है। शिष्य को हमारे उनके जो इष्ट देव हैं वो कितने महान है पता है उनको, तो उनकी सुंदर पत्नी को गोद में लेकर बैठे हुए फिर भी उनको कोई परेशानी नहीं है। उनके मुख से कम वो आप बोलेंगे कि कम से कम पत्नी को गोद में लेकर बैठे, कम से कम विरक्ति की बात मत करो, दूसरा कुछ बोलो। विरक्ति के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं, सब शिष्य लोग जो उनके सन्यस्त शिष्य हैं तो सुन रहे हैं उसको। तो ऊपर से वो चित्रकूट महाराज जा रहे हैं, वो भी एक देवता है, बड़ा भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो। तो वो ना ऐसे हंस पड़ते हैं, मतलब छद्मी रूप में हंसते कि भाई क्या है, ऐसे नहीं, गौरव के रूप में हंसते। देखो हमारे शिव जी कितने महान है, देखो मैं पत्नी को ले गोद में बैठ के विरक्ति का प्रवचन दे रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लेकिन उनको तो भाव में बड़े हुए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको पत्नी गोद में है या नहीं है। तो पार्वती को अच्छा लगता नहीं कि कोई व्यक्ति मेरे महान पत्नी का ऐसा पति का ऐसे हंस रहा है, उसके ऊपर मजाक कर रहा है उसका, तो शाप देती है उसको, तो राक्षस बन जाएगा। तो ये व्यक्ति विमान से उतरता है, दोनों को दंडवत प्रणाम करता है, माता आपका आशीर्वाद है, आपके मुंह से जो निकलेगा वो शाप नहीं है, आशीर्वाद है। तो पार्वती जी बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मैं किसी देवता को राक्षस बनने का शाप दे रही हूँ, तो वो बोल रहा है धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो शिवजी महाराज उनको समझाते हैं कि ये भगवान के भक्त हैं। स्वर्गम अपि नरकस्य तुल्य, क्या उसका श्लोक है वो पता है आपको, अपि तुल्याद, कि उनके लिए स्वर्ग नरक सब एक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उनको। कहीं भी रहे भगवान का भजन करेंगे वो, कहीं भी रखो, किसी भी शरीर में रखो, किसी भी योनि में रखो, कहीं भी जगह किसी भी जगह पर रखो, वो भगवान के भजन में कभी फर्क नहीं पड़ता है उनको। हाँ, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहितुकी त्वयि, यानी कि मोक्ष भी नहीं चाहते वो, भगवान ने जहाँ रखा वहाँ भजन करने को तैयार, तो वृत्रासुर बन जाता है वो। और वृत्रासुर के रूप में ऐसा भजन करता है कि शिवजी परेशान हो जाते हैं, राक्षस बना हुआ है लेकिन भगवान का भजन कर रहा है, और वो देखकर इंद्र व्याकुल हो रहेगा, इतना भजन करेगा तो मुझे फिर मेरी सीट खाली करनी पड़ेगी। तो क्या क्या करता है वो, तो वृत्रासुर के रूप में वो उपदेश कर रहे हैं, अरे इंद्र तुम इतने लालायित हो भोग के लिए, मैं टेंशन है कोई तपस्या करेगा तो मेरा पद खाली करना पड़ेगा। ऐसे शिवजी महाराज एक बार ऐसे ही वो भगवान रामचंद्र जो है ना वो लीला कर रहे हैं रामायण में, सीता जी का हरण हो चुका है और जंगल में पुकार रहे हैं, हाँ कहाँ है मेरी सीता, हे वृक्षों, हे बेलियों, हे फूलों पत्तों, आपने देखा है मेरे मृगनयनी सीता को कहीं? रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, इतना विद्ध है वो। तो अब क्या बोलेंगे, देखो कितने अटैचमेंट है पत्नी के अंदर, पत्नी गई तो इतना रो रहा है। तो ऊपर से शिवजी महाराज जा रहे हैं विमान में बैठकर अपनी पत्नी के साथ में, तो पत्नी क्या बोल रही है, ये कितना रो रहे, देखो कितनी पत्नी से आसक्ति है। तो हमारे शिवजी महाराज बोलते हैं, अरे नहीं वो लीला कर रहे हैं, ये क्या लीला कर रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, पागलों की तरह पेड़ों को पूछ रहे हैं कि कहीं मेरी मृगनयनी सीता को देखा है क्या तुमने, ये लीला हो रही है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। बोले नहीं प्रिय, ये मेरे भगवान है, मेरे आराध्य दैवत है, ये लीला कर रहे हैं पृथ्वी पर। बोले नहीं नहीं मुझे तसल्ली नहीं हो रही। बोले जाओ, तो ये क्या करती है, सीता देवी बनकर रोड पे खड़ी हो जाती है, जिसको ढूंढ रहे हैं, जिसको पुकार रहे हैं, इसके लिए छाती फूट कर वेलियों को पूछ रहे हैं, वही खड़ी सामने खड़ी है। तो हमारे रामचंद्र भगवान दंडवत प्रणाम करते हैं, बोले माता मेरा प्रणाम स्वीकार करो, आज यहाँ कैसे आना हुआ। तब वो समझ जाते हैं कि भगवान लीला कर रहे हैं। फिर भगवान वापस चालू वेलियों को पूछ रहे हैं, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, हे सीते कहाँ हो। लेकिन शिव जी जानते हैं सब कुछ चीज को, शिव जी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब भगवान शिव जी को स्थापन करके उसका पूजन कर रहे हैं रामेश्वर में, दुनिया कहती है कि देखो स्वयं राम ने शिव जी का पूजन किया, सबसे बड़े शिव जी हैं, लेकिन शिव जी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनको पूरा पता है कि भगवान लीला कर रहे हैं। मैं तो उनके भजन के योग्य नहीं हूं, मेरे भजन के योग्य है वो, मैं हमेशा उनका भजन करता हूं। फिर आप चलो आशेश्वर महादेव, नंदगांव में उनका निवास स्थान है, कैसा भाव है देखो शिव जी का। हाँ वो भगवान का जो है ना बाल रूप का दर्शन नहीं होता है पृथ्वी पर अपना गोलोक धाम में, तो सब देवता आते हैं, ब्राह्मण बनकर, कोई फूल वाली बहन बनकर देवी आती है, कुछ अनेक प्रकार के रूप हैं उनके, सब देवता लोग हैं ना अनेक प्रकार के रूप लेकर आते हैं उधर। तो शिव जी महाराज जो है ना वो ऋषि बनकर आते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि अगर शंकर के रूप में आएंगे तो थोड़ा सा हलचल मच जाएगा ना नंदगांव में पूरी। तो भक्त लोग, भक्त कभी जो ना ऐसा नहीं है कि वो अपना गौरव गौरव जो है ना सब जगह ऐसा दिखाना चाहिए कि भाई मैं कुछ हूँ ऐसा, वो नम्र रहते हैं, चनादपि सुनिचेन। तो साधु तो ब्रज में रहते ही हैं, साधु ब्रज में रहते तो साधु बनकर आए दर्शन करने के लिए। बहुत लोग आते हैं नंद भवन में तो कोई बड़ी हलचल नहीं मचेगी मैं आने से, तो साधु बनकर गए और भगवती भिक्षाम देही, भिक्षा मांगी, तो माता यशोदा आई, उसने कुछ मोती, कुछ कुछ रत्न और कुछ चावल, कुछ धान्या फल फूल का थाली बना दिया और गई देने के लिए, लो भाई महाराज दक्षिणा लो। तो कहते मैया हम वो दक्षिणा नहीं चाहते हैं। बोलो फिर क्या चाहते हो? उनका अजीब लगा, अभी बहुत ही भिक्षा दे मतलब कुछ भोजन चाहिए इनको। बोले नहीं मुझे लाला के दर्शन चाहिए, यही मेरी भिक्षा है। तो माता के अगर मन में टेंशन आता है तुरंत, अरे पहले तो लड़की आई थी, मुझे लगा था कि लक्ष्मी देवी है, साक्षात वैकुंठ से उतरी है, मेरे बालक को आशीर्वाद देने के लिए आई है, दूध पिलाना चाहती है, तो कितना बड़ा मेरा भाग्य है मेरे बालक का कि वैकुंठ से आई हुई लक्ष्मी देवी मेरे घर में बालक को स्तनपान करा रही है। लेकिन राक्षस निकली वो, उसके बाद बैलगाड़ी बनकर कोई आया, उसके बाद हवा बनकर, बवंडर बनकर कोई आया, मतलब बगुला बनकर आया, अरे कोई और क्या घोड़ा बनकर आया, कोई और बनकर आया, ये क्या चल क्या रहा है, अभी ऋषि बनकर आया, ये सब कंस के दूत हैं। तो बड़ा गुस्सा करते हैं उनके ऊपर, बोलते तुम सब लोग कंस के दूत हो, इतनी बार तो राक्षस बनकर दिखाई पड़ रहे थे, राक्षस बन के आ रहे हो, अभी तो भक्त बनकर आए हो, कितने तुम लोग कितने नीचे हो, कितने घृणास्पद तुम्हारी स्थिति है, जाओ चले जाओ, लेना हो तो लो, गेट आउट फ्रॉम हियर, कोई भिक्षा वक्षा आपकी मिलने की मिलेगी नहीं, आपको चाहिए जो है वो लो, नहीं तो चले जाओ यहाँ से, करके मुंह पे दरवाजा बंद कर देते हैं उनके। ये विनती करते हैं, भैया मैं वैसा नहीं हूँ, मैं तो दर्शन चाहता हूँ, मैं इनका भक्त हूँ वगैरह वगैरह। मतलब कोई भक्ति भक्ति नहीं होती यहाँ पर ऐसे, मैं सब लोगों को जानती हूँ, तुम लोगों को, तुम लोग कैसे मायावी लोग सब लोग हो, अभी इतना सारा भयंकर रूप धारण करके आए और अभी तुम भक्त का रूप धारण करके आए, लेकिन मैं नहीं भूलने वाली तुम्हारे सब नाटकों से, चले जाओ यहाँ से, करके भगा देती हूँ उसको। तो शिवजी महाराज चले जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं, उनकी पत्नी अले पहले से लीला में समाविष्ट हैं पूर्णमासी के रूप में, पार्वती देवी वो गोपियों की गुरु बनी हुई है, वो गोपियों के साथ ही रहती है उधर, संदीपनी की माता बनकर आई हुई हो, लीला कर रही है, वो भी देख रही है, अरे मेरे पति को भगाया जा रहा है, क्या करूं, वो तो जानते हैं अपने पति को, सोच रहे भी कुछ करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं हुए तो बेचारे जाकर बैठ गए उधर वन में, पास में ही वन है, वहां जाकर रो रो कर पुकारने लगे, रो रो कर पुकार रहे हैं। देखो कैसा है ना, हम लोग कुछ सेवा में करना चाहते हैं और सेवा नहीं कर सकते हैं, तो बोले ठीक है अभी क्या है, नहीं तो ठीक है दूसरी सेवा कर लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन ये छोड़ते नहीं आशा। आशा दो प्रकार की होती है ना, एक आशा मतलब क्या, होप, होप, होप को क्या बोलते हैं, आशा ही बोलते हैं, लेकिन एक आशा मतलब इच्छा, हमारी इच्छाएं, तो एक इच्छा धारण करके आए हैं लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हुई उनकी, लेकिन वो जो आशा है कि मेरी इच्छा पूरी होगी वो छोड़ी नहीं उन्होंने, निराश नहीं हुए, वो वन में बैठकर पुकार रहे हैं। कैसे भगवान को पुकारना चाहिए उन्होंने वहां दिखाया। हम लोग हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे, भाई क्या है नाश्ते में, क्या कचौड़ी है कि जलेबी है कि क्या बनेगा आज माल, हाँ फिर कुछ किसी को मिलना है किसी को, भोग की चिंतन करते रहते हम लोग, या तो भोग चिंतन नहीं हो रहा है तो नींद आ जाती है हमको, ऐसा हमारा भजन है। लेकिन उन्होंने ऐसा भजन किया वहाँ बैठकर कि भगवान भी व्याकुल हो गए। भगवान जानते हैं ना, बालक रूप में हो तो क्या हो, भगवान तो भगवान ही है, देख रहे मेरे भक्तों को माँ मेरी भगा दे रही है, तो ऐसा रोने लगते हैं वो, तो कृष्ण भगवान व्याकुल हो जाते हैं बाल स्वरूप वाले, वो कहते हैं भक्त को भी रो रो कर पुकार रहे हैं, जो रो के पुकारता है वो भगवान भी अस्थिर हो जाते हैं उसके लिए, व्याकुल हो जाते हैं, तो वो अपना अस्त्र निकालते हैं सबसे बड़ा, कौन सा अस्त्र बालक का होता है, हाँ रोना, जो बालक रोता है ना तो बड़े बड़े लोग शरणार्थी हो जाते हैं। जब हमारा राम रोता है तो हमारे अनंत सिम्हा प्रभु और उनकी पत्नी माधुरी पता नहीं क्या करती हैं, क्या करूं इसको भी, हम भी जब भी हमको पहले लड़की हुई थी वो हम ऋषिकेश आश्रम में थे, जब वो रोती थी रात को तो हम डॉक्टर हैं लेकिन पता चलता नहीं था क्यों रो रही है और कैसे को शांत करना है वो पता नहीं, अभी भी हमारी बेटी रोती है हमको पता चलता नहीं क्यों रो रही है। रोना जो बच्चे का होता है ना बहुत पावरफुल होता है, बड़े बड़े महारथियों को पूरा हृदय द्रावक बना देता है, पूरा डिफीट कर देता है कंप्लीट। तो मैया का अपना रुच का है, कुछ रोएगा तो पहले स्तनपान कराएगी, उसके बाद में नहीं रोएगा तो कुछ खिलौना देगी, फिर और कुछ गोपियां नाचेंगी, कुछ ना कुछ उनका अपना तरीका है उसको रिझाने का, एक एक करके वो करती है सब, स्तनपान को नकार देता है, खिलौने फेंक देता है, और जितना आप कोशिश करोगे उतना ज़्यादा रोता है। आपने अगर खिलौना देकर उसको शांत करने का प्रयास किया तो वो जोर से रोएगा, और ऐसे उसने चालू किया, सारे उपाय थक गए और रोना बंद नहीं हो रहा, और बढ़ते जा रहा है, नंद महाराज परेशान है, विशुद्धा मैया परेशान है, सब नंदगांव इकट्ठा हो गया है कि लाला रो रहा है क्या करें, वो मानता ही नहीं है, क्या बीमार है, क्या पेट में दर्द हो रहा है, क्या बुखार आने वाला है, क्या समस्या, क्या किसी भूत ने ग्रास लिया है कि क्या हो रहा है, टोना कर दिया किसी ने, जादू कर दिया, इतनी चर्चा हो रही, सब लोग परेशान है उधर। उतने में पूर्णमासी आती, बोले ये अच्छा मौका है, तो सब पूर्णमासी को पूछते गुरुदेव मतलब माता गुरु माता कुछ उपाय बताना, तो बोलते हैं साधु जो होते हैं ना भगवान के बड़े पावरफुल होते हैं, उनकी कृपा से क्या नहीं होता है, साधु जब कृपा करता है तो चमत्कार हो जाते हैं, तो आपने उस साधु को उस दिन भगा दिया था ना, बड़े महान साधु है वो, बड़े दूर से आए थे और मैंने सुना है कि अभी गए नहीं, वो इधर ही बैठ कर रो रहे हैं, आपने तो नकार दिया उनको, ठुकरा दिया, लेकिन वो पुकार रहे हैं बैठ कर रो रो के, जाओ उनको बुला लो शायद उनकी कृपा से कुछ चमत्कार हो जाए। तो मैया का भाव कैसा है देखो, जिसको ठुकरा दिया उसको बुलाने को भेजा उसने तुरंत, आप क्या बोलेंगे, नहीं नहीं आप ऐसा करो किसी दूसरे साधु को बुलाओ, मैं इसको नहीं बुलाऊंगी क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी भगा दिया है, पता नहीं वो ऐसे ही मन में कुछ, सो हम लोग अगर उस जगह होते ना, हमने आपका हमने आप आपका अपराध कर दिया है, अगर हम आप जैसे आदमी से हमारा कुछ काम है तो हम लगे ये नर्स को मत बुलाओ किसी और को बुलाओ वो पता नहीं वो व्यक्ति किस भाव से आएगा, कुछ मन में किंतु परंतु रख के आएगा, फिर मेरा काम कैसे होगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं अपने दुनियादारी में के भाव में, अपने प्रैक्टिकल भाव में सोचते हैं, लेकिन माता को कोई मन में संकोच नहीं है, जिसको अपराध किया उसके चरणों में गिर सकती है, फिर उसका अपमान भी कर सकती है, लेकिन मन में एक ही चीज़ है, श्री कृष्ण का हित चाहती है वो, श्री कृष्ण के हित को मन के रखते हुए वो कुछ भी कर सकती है, विपरीत व्यवहार भी कर सकती है, अभी कुछ कर रही है उसका उल्टा दूसरा व्यवहार कर रही है, तो तो उसी व्यक्ति को आदर पूर्वक आरती वारती लेकर गोपियों को भेजती है कि इनको सम्मान से बुला लो। और शिव जी को बुलावा आता है तो तुरंत भागते नंद भवन पे, और मैया बालक को रे रो रहा है जोर से, मैया परेशान है। बोले ये उपाय चलेगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन इसको ट्राई तो कर लेते हैं। जैसे ही बाहर ले आती है बलाला को, दर्शन हो जाते हैं शिव जी को, वो चरणों को स्पर्श करते हैं बालक के, तुरंत बालक रोना बंद हो जाता है। फिर मैया क्या बोलती है, जब जब मेरा लाला रोवे तब तक दर्शन दीजिए, अभी तुम इधर ही रहो, अभी जाओ मत यहाँ से, यही नंदगांव में रहो, और जब जब मेरा लड़का रोएगा ना तब मैं तुमको पुकारूंगी। मतलब क्या बना दिया उनको, ठाकुर जी का खिलौना बना दिया है ना, जब जब रोएगा तो तुम्हें लेके आऊंगी, तुम उसके लिए फिर खिलौना बन जाना। इतने बड़े महादेव हैं, एक भाव क्या है उनका, ठाकुर जी के लिए कुछ भी, जैसे कोई प्रेमी बोलता है ना प्रेमिका के लिए, तुम्हारे लिए कुछ भी करने का तैयार हो, आसमान के चांद के तारे टुकड़े भी लेता हूँ। तो पहले बोलते हैं कि अभी तो मेरा रिचार्ज तो कर लेना पहले, बाद में चांद के बाद में देखेंगे। लेकिन ये सब हमारी फिल्मी बातें हैं, तो डायलॉग में ऐसे ही होता है, कुछ होता तो कुछ होता तो कुछ नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल प्रैक्टिकल में है, वो कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने कहा लड़के बन जाओ तो लड़की बन गए, माँ बोल रहे खिलौना बन जाओ तो खिलौना बन गए, वही रह गए वो। और वो क्या बोलते हैं, तुम खाने पीने का चिंता मत करना, सबसे पहले भोग तुमको ही लगाऊंगी, इसको खिलाऊंगी तुमको दे दूंगी, डोंट वरी। तो वही रह रहे नंदीश्वर महादेव के रूप में, आशेश्वर पर तप किया और नंदीश्वर के रूप में विराजमान है। आज भी जब भगवान का चरणामृत बनता है ना तो शिव जी पर चढ़ता है पहले, वो भगवान को भोग लगता है तो पहले शिव जी को एक भोग जाता है वहां पर। और मैया कितना प्रेम से उनको रखी है वहां पर, हाँ मैया तो मैया ही है, तो बालक के समान रखी हुई है। और मुझे अभी याद आती है, मैं 10 मिनट में आपको कथा बताता हूँ 5 मिनट में, कि भगवान के लिए ये जो भक्त होते ना वो कुछ भी करने को तैयार रहते। एक बार क्या हुआ कि वो कौन सबसे बड़ी पतिव्रता है इसके लिए चर्चा हुई, तो ब्रह्मा विष्णु महेश सोच रहे थे कि अरे उनकी पत्नी जो है ना, ब्रह्मा जी की पत्नी, शिव जी की पत्नी पार्वती देवी और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी देवी, सोचे हमारे ऊपर कौन हो सकता है, हम तो सबसे श्रेष्ठ औरतें हैं। तो उनको ऐसा एक मन में था कि हमारा ये नाम आएगा, जब सतियों का पतिव्रताओं का चर्चा होगा तो हमारा ये नाम आएगा। लेकिन उनके पतिदेव खुद कहते हैं कि नहीं, आप लोग महान सती नहीं हो। फिर उनको लगता अरे फिर कौन हो सकता है, हमारे यहाँ पर हम तो देवता हैं और सभी देवताओं सभी लोकों में हमारा लोक सबसे सर्वश्रेष्ठ है और हम ही सर्वश्रेष्ठ अपने लोकों में हैं, तो और कौन हो सकता है। तो नहीं, पृथ्वी पर एक है अनसुईया देवी, अत्रि महाराज की पत्नी है वो। तो फिर उनको लगता है अरे ईर्ष्या होती है मन में, ऐसे कैसे हो सकता है, जो मानव शरीरधारी है वो हमसे बढ़कर पतिव्रता कैसे हो सकती है, हम तो देवता शरीरधारी हैं। तो नहीं नहीं, आप लोग जाओ और हमको साबित करके दिखाओ कि जो आप कह रहे हो वो सच है, सिद्ध करो मेरे सामने कि ये सच है। तो फिर ये तीन लोग जो है ब्रह्मा विष्णु महेश साधु बनकर अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं और बोलते भवती भिक्षान देही, तब तो पति की सेवा करती रहती है, थोड़ी देर से आती है, भाग बबूला हो जाते हैं। फिर वो कहते कोई बात नहीं, पति की सेवा कर रही थी तो बैठो भोजन करो। बोलते नहीं, हमारी एक शर्त है, आपको सारे वस्त्र उतारकर नग्न होकर हमको भोजन देना पड़ेगा तो हम खाएंगे। तो वो समझ जाती है कि इनका कुछ है प्लानिंग, तो कहते कोई बात नहीं ठीक है। अभी आपको प्रश्न होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, वस्त्र उतार कर भी सतीत्व का रक्षण कैसे हो सकता है। अंदर जाती है, पति के सवेरे की पूजा का कमंडल है, उसमें जल है, पवित्र जल उसमें जल है, वो लेके कमंडल लेके आती है और तीन साधुओं पर उसको जल छिड़क देती है। तो तीनों जो थे ना रेंगते हुए बालक, नंगे बालक बन जाते हैं तीनों देवता। अभी रेंगते हुए बालक जो है, आपका घर में छोटा सा बालक है, आप उसके सामने स्नान भी करते हो जाकर बाथरूम में, बालक को क्या है, बालक तो बाथरूम में खेलते रहते हैं, आप उसको बाथरूम में भी खिलौना देते हो, स्नान करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उसको। फिर सारे वस्त्र उतार कर उनको भोजन कराती है और ये बालक भोजन कर रहे हैं, उसके बाद में बालक ही रहते हैं वो, और बालक को इतना प्रेम करती है अत्रि देवी की पत्नी कि वहीं रह जाते हो, इतना वात्सल्य है उनके उनके मन में भी, अत्रि देवी की पत्नी जो अहिल्या सॉरी अनसुईया देवी, और इनके मन में भी माता के प्रति इतना भाव है, तो तो वही रह जाते हैं। तो उधर तीन देवियां परेशान, बोले पत्नी पति हमारे गए थे परीक्षा लेने के लिए, अरे कितनी लंबी परीक्षा चल रही है, क्या है किधर गए, किधर वापस से लौट के नहीं आए। तो तीनों देवियां पहुंची, उनको पता था कहाँ परीक्षा करने गए, उधर ही पहुंच गए। और अनसुया देवी को पूछते हैं कि हमारे पति कहाँ है, तो बोले वो देखो खेल रहे हैं वहां पर, दे रहे हैं पति हमारे नंगे होकर वहां पर खेल रहे हैं, कृपा करके उनको वापस कर दीजिए हमको। तो फिर पति के कमंडल का जल लेके आते छिड़कती है तो ब्रह्मा विष्णु बन जाते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें आपको पुत्र बनने की बहुत इच्छा है, हम आपका पुत्र बनना चाहते हैं। बोले ठीक है। तो तीनों मिलकर अत्रि देवी के पुत्र बने, कौन, दत्तात्रेय भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठा होकर, और दुर्वासा मुनि भी शिव जी का अंश उनके अंदर पैदा हुआ। मुझे ब्रह्मा जी का भी ढूंढ के निकालना है कि एक और भी बने थे उनके, आपको पता है। तो ऐसे उन्होंने फिर जन्म लिया, ठीक है। लेकिन अत्रि देवी, अत्रि की पत्नी जो है अनसुईया, वो क्या कह रही है, चलो मैं आपको वरदान दे रही हूँ, आपको प्रेम किया, मुझे भी बहुत प्रेम है आपसे, लेकिन आप लोगों ने मुझ पर परीक्षा करने का प्रयास किया, तो मैं आपको शाप देती हूँ कि आप तीनों पत्थर बन जाओगे। तो वो क्या बने, ब्रह्मा जी बरसाने में पत्थर बने हुए हैं, शंकर जी नंदगांव में पत्थर बने हुए हैं, और विष्णु जी कहाँ बने हुए हैं, गोवर्धन महाराज बने हुए हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी ने पत्थर बनने का स्वीकार किया है, शिव जी महाराज भी पत्थर बने हुए हैं, उनके ऊपर सखा डोल रहे हैं सब, नंद महाराज यशोदा सब सखा, कृष्ण बलराम लीला कर रहे हैं उनके ऊपर। एक जगह देवता है, एक जगह क्या है उनका, एक्चुअली उनका असली स्वरूप ये है ब्रज का, ये जो साई भाव उनका ये है, उनकी ड्यूटी देवता की है, लेकिन हृदय से कौन है, वो भगवान के परम भक्त हैं। ड्यूटी के रूप में फिर विध्वंसक है, विश्व का नाश करते हैं, तांडव करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन किसी व्यक्ति का जो मूल होता है ना, मूल स्वभाव, वो ड्यूटी की जगह प्रकट करने का सवाल नहीं उसका, लेकिन वो करता है अपना कर्तव्य। कोई अफसर बना हुआ है, हमारे भी मेडिकल कॉलेज में एक हमारे माइक्रोबायोलॉजी के टीचर थे, हाँ माइक्रोबायोलॉजी टीचर थे, हमको सिखाते थे, लेकिन बहुत भगवान के बड़े भक्त थे वो, रोज सवेरे 3 बजे उठकर भजन करते थे वो, इतने नम्र और इतने स्वभाव, कोमल स्वभाव के थे वो। तो बाहरी रूप से माइक्रोबायोलॉजी के टीचर हैं, लेकिन स्थायी भाव से कौन है, भगवान के भक्त हैं। और कहते थे कि मैं भजन नहीं करता, मुझे मेरे गुरुजी जगा देते हैं सुबह 3 बजे प्रेरणा से, और मुझसे भजन करवा लेते हैं। तो वो उनका मूल मूल स्वरूप है ना, और बाकी सब जो है वो ड्यूटी है उनकी। तो वैसे शिवजी महाराज जो है देवता के रूप में ड्यूटी देते हैं विश्व का करने के लिए, लेकिन स्थायी भाव से कौन है, वो एक ब्रजवासी भक्त है भगवान के। तो नहीं, महान है वो कि उन्होंने राधा रानी के गौरव में स्तोत्र बनाया, कृपा कटाक्ष स्तोत्र, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, हे राधे कब कृपा करोगी। वो उन्होंने रचा हुआ है, कहाँ रचा हुआ है, वो बरसाने में जो माहेश्वरी सर है गौरी कुंड विहार कुंड में, उसमें बैठ कर रचा उन्होंने, और वो अपने पत्नी को भेंट दिया उन्हें, गिफ्ट, गिफ्ट भी हो तो ऐसे गिफ्ट होने चाहिए जो आज चिरंतन काल तक दुनिया गा रही है उसको, नष्ट नहीं हो रही वो। तो ये शिवजी महाराज हम सबको भक्ति देने में समर्थ हैं, सबको, लेकिन कोई भक्ति नहीं चाहता है उनसे। उनको जाते बोलते हैं कि अच्छी पत्नी दो, अच्छा पति दो, धन दौलत दो, नृत्य कला में निपुणता दो, और फलाना कला में मुझे आशीर्वाद दो, यही चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं, उसके उनके लिए कोई भजन नहीं करता है। तो यहाँ पर जो आत्मदेव ब्राह्मण हुए थे, उन्होंने शिव जी का ऐसे भजन किया था, लेकिन निरपेक्ष किया था, किसी भी इच्छा के न होते हुए। तो शिव जी प्रकट हो गए सपने में उनके, क्योंकि आज तक हमारे लिए, हमारे सामने हमारे कोई भी भक्त थे वो ऐसा कुछ नहीं करते थे बिना इच्छा के, आपने किया हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं, कुछ देना चाहते हैं आपसे। तो आत्मदेव ने कहा नहीं नहीं मैंने तो कुछ सोच के किया नहीं था, मैं आपका चाहता हूँ, आपका भक्त हूँ, नहीं आपको लेना ही पड़ेगा कुछ। तो आत्मदेव ने कहा फिर सोच के कि आपको जो सबसे प्रिय वस्तु है ना वो देना मुझे आप। तो शिव जी नृत्य करने लगे, जोरदार नृत्य करने लगे, बोले आज तक मेरे कितनी लाइन लगती है सब जगह पर, लेकिन किसी ने मेरी प्रिय वस्तु को भी मांगा ही नहीं, आज मैं बड़े दिल से आपको मेरी प्रिय वस्तु दूंगा। सोए में आपके कुएं में उतरो स्नान करके, और उधर आपको टनल मिलेगा, बोगदा क्या कहते हैं उसको, आप जो जगह होती है ना अंधेरी जगह होती है अंदर तक, ऐसे गुफा जैसी, लेकिन गुफा नहीं बोलते उसको, लंबा होता है वो, बहुत टनल एंड तक जाता है इधर, तो गुफा तो होती है सुरंग टाइप होता है, सुरंग। तो आपके गुफा में, आपके जो कुएं में जो सुरंग है, उसके अंत में आपको मेरी हृदय की प्रिय वस्तु मिलेगी। तो आत्मदेव ब्राह्मण उतरते हैं और किसको पाते हैं? राधा वल्लभ जी को प्राप्त करते हैं। उनके जीवन प्राण राधा वल्लभ जी श्री कृष्ण भगवान है। और उसके बाद में आदेश देते हैं कि अभी इनका ही पूजन करना। तो आत्मदेव जी उनका पूजन करना शुरू कर देते हैं। तो मैं अंत करूंगा आज की कथा का इस बात से कि शिवजी महाराज हमको भगवान की शुद्ध भक्ति देने में समर्थ हैं, लेकिन कुछ कोई भी लोग उनसे मांगते नहीं है वो, इसलिए वो फिर वो जो कुछ मांगते हैं उसको देते रहते हैं, क्योंकि वो देने की शक्ति भगवान ने दी है उनको। आप बोलेंगे अच्छा पति दो, अच्छी पत्नी, तो ठीक है, तथास्तु, उसका कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करो, फिर दे दो, दे देते हैं उनको। लेकिन उनको उसमें इतनी खुशी नहीं होती है आपकी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने में। अगर कोई व्यक्ति आता है उनके सामने भक्ति मांगता है तो बड़े खुश हो जाते हैं और दिल से भगवान की भक्ति देते हैं उनको। तो ये हमको समझना है, शिव जी के पास जाकर कभी भी धंधा बढ़े, नौकरी में प्रमोशन हो जाए, ऐसा हो वैसा हो, मांगना नहीं कभी भी, भगवान की भक्ति मांगना उनसे। वो आप पर प्रेम करेंगे, जो लोग कुछ मांगते हैं उनको देते हैं वो, लेकिन जरूरी नहीं कि आप पर प्रेम करेंगे जब आप मांगेंगे वो देंगे। ये प्रक्रिया में जब आप मांगेंगे भक्ति, भक्ति देकर आप पर प्रेम भी करेंगे, आपको अपना भी बना लेंगे, आपके हितैषी बन जाएंगे वो। हम भी शिव जी की कृपा से भक्त बने हुए, रोज जाकर सोमवार को अभिषेक करते थे। भाई पहले MBBS में थे, अभी पढ़ाई नहीं किया था, तो वो सोच रहे थे कि फेल हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हमने बड़ी तपस्या करके वहाँ पर सोमवार को जाते थे और दूध चढ़ाते थे, महाराज पास करवा दो बस, इज्जत बची रहे अच्छा है। महाराष्ट्र में रैंक आया था SSC में, अभी तो फेल होने की नौबत है। तो हर सोमवार को अभिषेक करते थे और फर्स्ट क्लास में पास हो गए। फिर अगले सोमवार में भी गए एग्जाम के बाद, पास होने के बाद, लेकिन अभी तो दूसरी एग्जाम बहुत लंबी थी, तो अभी लोग अभी क्या मांगे उनसे, तो बहुत सोचा, दूध अर्पण किया, बोला क्या मांगना है। तो हमने कहा, हृदय से अभी भी मुझे याद है, मैंने कहा कि जो भी मेरे लिए अच्छा है वो करो, मेरा कल्याण किस में है वही करो। और 3 महीने में हम हरे कृष्णा मंदिर में गए और भगवान का नाम प्राप्त हुआ हमको। मुझे अंदर से विश्वास है कि ये शिव जी की कृपा है। और अभी मुझे पता है आज की तारीख में कि उस समय जैसे जितना में शिव जी का भक्ति व्यक्ति था मेरे अंदर, वो कुछ भी, वो सब नाटक था एक्चुअली। आज जो शिव जी के प्रति मेरे मन में भाव है वो उससे कई गुना बड़ा है। एक कृष्ण भक्त बनने के बाद में शिव जी की जो असली वास्तविकता पता चलती है वो शिव जी की कृपा है। उन्होंने कृष्ण की भक्ति देने के बाद में उनका सही स्वरूप जो है वो प्रकट हो गया। और हमारे इसमें कई लोग ऐसे हैं जो पहले शिव जी के भक्त थे, भगवान के भक्त है, तो अभी भगवान के भक्तों के मतलब शिव जी को अभी भाई हटा दो यार, बाजू कर दो उनको, क्या जरूरत है, गणेश जी को बाजू कर दो, नहीं, सब लोगों ने हमको मदद किया हुआ है भगवान की भक्ति में और आज भी कर रहे हैं। वो हमारे हितैषी हैं, देवता रूप में है, और वैष्णव लोग देवताओं की पूजा वगैरह नहीं करते, सब सम्मान जरूर करते हैं, उनका पूजन जरूर करते हैं, आदर जरूर करते हैं, उनके उनके उनकी प्राप्ति के लिए भजन नहीं करते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं भगवान का भजन करने के लिए। और ऐसे लोगों को शिव जी बड़ी आनंद से कृपा देते हैं उनकी, लो क्योंकि मैं भी तुम्हारे रास्ते में हूँ, तुम जिस रास्ते में जाना चाहते हो उस रास्ते में मैं भी हूँ, मैं भी उसी का अभिलाषी हूँ, किसी मुझे मुझ पर कृपा करें, जो भी मेरे पास है वो आपका है, ऐसा भाव शिव जी रखते हैं। तो हमको उसी भाव से शिव जी के पास जाना चाहिए, जरूर करना चाहिए। हम मुझे ब्रिजवासी ने बताया था, ब्रिजवासी गोस्वामी ने, कि आप, मैं आपको पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जरूर शिवरात्रि का व्रत किया करो। आप ब्रज में आते जाते रहते हो तो शिवरात्रि का व्रत करो। तब से मैंने कई साल से मैं शिवरात्रि का व्रत करता हूँ, इतना भाव है ब्रजवासियों का उनके अंदर। ब्रजवासी लोग शिव पर, शंकर पर बहुत प्रेम करते हैं, कितने लोग हैं वो गोपेश्वर के लिए पागल हैं, वहाँ पर जाके दर्शन करते रहते हैं भाव से। ये नहीं कि धंधा बढ़े, लोही बाजार में बिजनेस बढ़े, शिव जी को हृदय से चाहते हैं कि भगवान के भक्त हैं, बड़े भोले भाले कृपा करने वाले हैं आशुतोष महाराज। बोलो शंकर भगवान की। तो आज हमारा जो उत्सव है, आज के दिन क्या हुआ था, आज के दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। आज जन्मदिन नहीं है उनका, शिव पार्वती का विवाह इस दिन हुआ था। अभी कई कहानी, अभी 1 घंटे में क्या क्या बताएं आपको, भागवत पुरी उनकी कहानियों से भरा हुआ है, पुराण उनकी कहानियों से भरे हुए हैं, उनके विवाह का वर्णन भी बहुत विस्तार से वर्णन आया है शिव जी पार्वती जी का। और कहाँ वो विवाह हुआ था उनका, एक तो सती बनकर उनका विवाह हुआ था, सती ने अपना देह दान कर दिया, फिर पार्वती का रूप में जन्म लिया, फिर तपस्या किया, फिर शिव जी पार्वती का विवाह हुआ है, वो कन्याकुमारी में भारत के अंत में उधर नीचे विवाह हुआ है उनका। आज भी उस विवाह में जो फूल उधेड़ दिए थे ना उनके विवाह के गौरव में, वो कलरफुल रीति बनकर वहां विराजमान है। सात प्रकार की कलर रंग की रेती वहां पर है, आज भी सात रंग की रेती है, हर प्रकार की रेती है। वो उनके विवाह का वैभव है, बड़ी लंबी कहानी है वो, अभी तो समय नहीं उसके लिए, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हमारा आश्रय है शिव जी, और दोनों पति पत्नी जो हैं वो ब्रज में सब पर कल्याण करने के लिए बैठी हैं। कितने प्रकार का स्वरूप है, नंदी बंदी आनंदी बंदी के रूप में देवी जी खड़ी हैं, कितने प्रकार मनसा देवी संकेत देवी सब प्रकार के रूप में वो लीला की सहायता कर रही हैं। ऐसे दोनों पति पत्नी, और पुत्र कौन है उनके, गणेश जी महाराज जिनको भगवान ने कामे वन में आश्रय दिया है, कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति बने हुए हैं, मोर जिनका आसन है वाहन है। तो ऐसे हम शिव जी का गौरव करते हैं। जो मैंने शुरुआत में कही थी बात वही अंत में कहूँगा कि ब्रज में रहते हुए ब्रज का जो भक्ति करते हैं वो गोपेश्वर महादेव को नहीं भूल सकते हैं, उनके बिना ब्रज की भक्ति और ब्रज का स्मरण जो है वो पूर्ण नहीं होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।